मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 12 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले जो आपको कहानी सुनाई थी क्रिसमस का उपहार, ओ हेनरी की कहानी थी, उसे आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। एंजॉय ही नहीं किया था बल्कि मैंने देखा कि उसके बड़े अलग अलग कलर्स को आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती के साथ पकड़ा था। और अगर आप कलर्स को पकड़ लेते हैं, जैसे संवेदनाएं कह लीजिए, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक रूप से पड़ता है। तो मुझे लगा कि इस तरह से बीच बीच में मुझे कहानियां सुनानी चाहिए और आज मैं आपको जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं उनके नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द वर्ल्ड। लियो टॉलस्टॉय 1828 में इनका जन्म हुआ था और 1910 में इनका निधन हुआ, यानी कि आप कह लीजिए कि 1900 की शुरुआत तक ये रहे। और इनका जो जन्म हुआ था ये बहुत ही धनी और बहुत ही सामंतीय परिवार के व्यक्ति थे, और इसके बावजूद जो इनके विचार हैं वो सामंतवाद के विरोध में है। टॉलस्टॉय की जो सबसे बड़ी बात रही है, जो शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो, कि गांधी जी का ये मानना था कि टॉलस्टॉय का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। दो लोग हुए, एक मार्टिन लूथर किंग का, अगर आपने नाम सुना हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन पर भी टॉलस्टॉय का बहुत जबरदस्त प्रभाव था। और दोनों ने बड़े खुले रूप में इसे स्वीकार भी किया है। और इनकी बहुत ही एक महान रचना है वार एंड पीस, जिसे आप कहते हैं युद्ध और शांति। ये बहुत मोटी किताब है, इसे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली है। और दूसरी इनकी किताब है अन्ना कैरेनिना। हालांकि अन्ना कैरेनिना को लोग युद्ध और शांति से भी महान रचना मानते हैं, फिर भी युद्ध और शांति, वार एंड पीस जो है, वो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। मित्रों इनकी एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। आज मैं आपको यह कहानी पढ़कर सुना रहा हूं, राइट। थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी, इसलिए मैं शुरू से आपको सतर्क कर देता हूं कि जरा ध्यान से सुनिएगा। शीर्षक है एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए, लियो टॉलस्टॉय। एक गांव में पारबोम नाम का एक किसान रहता था। पारबोम ये किसान का नाम है। एक दिन उसकी पत्नी की बड़ी बहन उसके घर आई। वह शहर में रहती थी, उसका पति व्यापार करता था। उसने पारवोम की पत्नी से अपने शहरी जीवन की प्रशंसा की। उसने बताया कि वह शहर में अपने पति व बच्चों के साथ अक्सर घूमने व स्केटिंग करने जाती है। पारवोम की पत्नी को शहर की तारीफ अच्छी नहीं लगी। उसने अपने गांव के जीवन की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारा जीवन तुम लोगों के जीवन से कहीं अच्छा है। तुम लोगों के पास बहुत सा धन है, लेकिन तुम बहुत बुरी स्थिति में भी फंस सकते हो। व्यापार का कोई ठिकाना नहीं कब घाटा हो जाए, परंतु हम लोगों के साथ ऐसी बात नहीं है। हम किसान बहुत धनी तो नहीं है, लेकिन जरूरत की चीजों की कमी कभी भी नहीं पड़ती। बड़ी बहन तुरंत उसकी बात काटकर बोली, तुम लोगों के पास गाय, बैल और बछड़ों को छोड़कर रखा ही क्या है? न पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और न ही अच्छे लोगों का साथ। तुम्हारा पति चाहे जितनी मेहनत करे, लेकिन तुम लोग इस मिट्टी के घर में ही रहोगे और एक दिन इसी मिट्टी के घर में मर जाओगे। यह सुनकर पारवोम की पत्नी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम लोग तुम लोगों से अधिक सुखी हैं। हमारे खेत हमारे अपने हैं, हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। शहर का माहौल ठीक नहीं है, कभी भी तुम्हारे पति को जुए या शराब की लत पड़ सकती है और तुम्हारा तो फिर जीवन भी बर्बाद हो सकता है। पारवोम उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। उसने पास आकर अपनी पत्नी का पक्ष लेकर कहा, हम अपने खेतों में बचपन से ही काम में लग जाते हैं, इसलिए बुरी आदतों के विषय में सोचने का हमें समय ही नहीं मिलता। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मेरे पास जमीन थोड़ी है। यदि मेरे पास अधिक जमीन हो जाए तो फिर मुझे चिंता न रहे। इस बातचीत में काफी समय बीत गया था, इसलिए दोनों बहनें रसोई का काम करने चली गईं। पारवोम के घर के पास एक महिला रहती थी। एक दिन उसने ऐलान किया कि वह अपनी जमीन बेचना चाहती है। गांव के अन्य किसानों के साथ साथ पारवोम ने भी उसकी थोड़ी सी जमीन खरीदी। इसके अतिरिक्त उसने अपने एक रिश्तेदार से भी थोड़ी सी जमीन खरीद ली। अब पार्वो मेहनत करके काफी अनाज पैदा करने लगा और उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। एक दिन पार्वोम के घर एक किसान आया। उसने पार्वोम को बताया कि रूस की प्रसिद्ध वोल्गा नदी के पास एक नई बस्ती बसाई जा रही है। वहां बसने वाले हर आदमी को 10 बीघे जमीन मुफ्त दी जा रही है। उस जमीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है। कुछ समय पहले वहां एक गरीब आदमी आया था जिसने उस जमीन में गेहूं पैदा करके 5000 रूबल कमा लिए हैं। यह सुनकर पार्वों की आंखें खुशी और आश्चर्य से फैल गई। उसने सोचा कि उसे वहां जल्दी से जल्दी जाकर बस जाना चाहिए। वह बड़े उत्साह से वहां पहुंचा। उसके परिवार में कुल 5 लोग थे, इसलिए उसे 50 बीघा जमीन मिली। यह उसके गांव की जमीन की तुलना में 2 गुनी थी। वह इस जमीन में गेहूं पैदा करके बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन अभी भी पार्वोम पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। वह और जमीन चाहता था। एक दिन उसने एक व्यापारी से ठेके पर कुछ जमीन ले ली। उस जमीन पर भी गेहूं की काफी अच्छी फसल हुई और उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन वह ठेके की जमीन से खुश नहीं था। वह चाहता था कि उतनी जमीन उसके पास अपनी होनी चाहिए। वह खरीदने के लिए जमीन ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कुछ गरीब किसान मिले। वे बहुत कम दाम पर अपनी जमीन बेचना चाहते थे। उसने उनसे सौदा तय करके केवल 1000 रूबल में 500 बीघा जमीन खरीद ली। एक दिन एक व्यापारी पार्वोम के घर आया। वह अपने घोड़ों के लिए चारे की तलाश में था। उसने बताया कि वह बाशकीर से आ रहा है। वहां उसने पिछले दिनों ही 1000 रूपल में 5000 बीघा जमीन खरीदी है। वह अगले दिन ही अपने नौकरों के साथ बाशकीर के लिए रवाना हो गया। बाशकीर के लोगों ने जब पार्वोम को देखा तो उसे चारों ओर से घेर लिया। जब पार्वोम ने उसे बताया कि वह जमीन खरीदने आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के मुखिया स्तारशिना ने उससे कहा, हमारे पास बहुत जमीन है, जितनी चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है। कल सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से जमीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन का चक्कर लगा लोगे, वह जमीन 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी, और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे। पार्वोम जमीन बेचने के इस अद्भुत ढंग पर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उसने उनकी शर्त मान ली। अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रूबल रख दिए। तब तक वहां और भी लोग जमा हो चुके थे। सूर्योदय होते ही वह जमीन का चक्कर लगाने निकल पड़ा। यहां देखिए, जो वो चक्कर शब्द कह रहे हैं वो अनुवाद की थोड़ी सी गलती है। उन्होंने कहा यह था कि एक पॉइंट से तुम जमीन फिर चलना शुरू करो और आगे आगे चलते चले जाओ, और चलने के बाद फिर तुम्हें सूर्यास्त होते होते इसी पॉइंट्स तक, जहां से तुमने चलना शुरू किया था, यही तुम्हें लौटना होगा। और अगर तुम यहां तक लौट आए तो जहां से तुम लौटे थे वहां तक की पूरी जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ये कहा गया था। ठीक है, तो चक्कर का मतलब गोल से होता है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना करें, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा यहां स्पष्ट किया है। वह लंबे लंबे डग भरकर चल रहा था ताकि अधिक से अधिक जमीन का चक्कर लगा सके। कुछ दूर चलने पर उसे गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा। उसने कोट उतार दिया और सीधी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखिए, यहां क्लियर किया है, सीधी दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगा जैसे जूता पहनकर चलने में उसे परेशानी हो रही है। उसने जूता उतार दिया और आगे बढ़ गया। चलते चलते वह सोच रहा था, जितना भी आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही अधिक जमीन मिलेगी। यह सोचकर वह और तेज गति से चलने लगा। दोपहर हो गई तो उसे भूख लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और अधिक जमीन पाने के लालच में तेजी से चल दिया। धूप और तेज हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थक कर चूर हो गया, फिर भी वह रुका नहीं। उसने सोचा कि थोड़ी और मेहनत से और अधिक जमीन मिल जाए तो क्या बुराई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत सुंदर जमीन का टुकड़ा दिखाई पड़ा। यह जमीन छोड़ना मूर्खता होगी, यह सोचकर उसने उस जमीन का भी चक्कर लगाने का फैसला किया और तेजी से चलने लगा। उसके पांव में छाले पड़ गए थे और खून निकलने लगा था। उसने सूर्य की ओर देखा तो पता चला कि सूर्यास्त में थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। उसने मुड़कर मुखिया की ओर देखा, वह बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूर्यास्त तक वहां नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वह बुरी तरह थक गया था। अब वह हर चीज भूल गया, यहां तक कि जमीन की बात भी। अब वह सिर्फ यह सोच रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए। इसलिए मुखिया के पास पहुंचने के लिए वह चलता गया। वह जैसे ही मुखिया के पास पहुंचा सूर्यास्त हो गया। वह लड़खड़ाकर मूर्छित सा जीवन पर गिर पड़ा, पर गिरते गिरते भी उसने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी छू ली। मुखिया ने कहा, शाबाश पार्वो, तुमने सचमुच काफी जमीन का चक्कर लगाया है, यह सब जमीन तुम्हारी है। पार्वोम का नौकर उसे उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन पार्वोम के मुंह से खून निकल रहा था, वह मर चुका था। यह देखकर मुखिया हंसा और उसने पार्वोम के नौकर की ओर एक फावड़ा फेंक कर कहा, इसे दफना दो। नौकर ने पार्वोम के सिर से पैर तक 3 गज जमीन खोदी और दफना दिया। उसे इतनी ही जमीन चाहिए थी। मित्रों, यह कहानी है, मेरे दिल को छूने वाली कहानियों में से यह एक है। मैंने इस कहानी को आप सब तक पहुंचाया है और मुझे यकीन है कि इस कहानी ने आपको भी कहीं न कहीं से छुआ ही होगा, और छूने के साथ साथ मैसेज इसका बहुत स्पष्ट है, आपके दिमाग को कहीं न कहीं मथना भी शुरू कर दिया होगा। तो मित्रों, इस पर आप सब सोचें, विचार करें, अपने अपने ढंग से अब इससे मैसेज लें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।